ओम शांति। ग्यारह नंबर के रजिस्टर में पहली दिन से दो चार नवासी के पास चला रूहानी बाप और रूहानी बच्चों को समझाते हैं। कैसे बच्चों को? रूहानी बच्चों को, सामान्य बच्चों को नहीं समझाते। सामान्य वाला बेअभिमानी बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बैठे नहीं समझा होगा। ये एक बात ही समझाते हैं और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते हैं। अपने को आत्मा समझो। ये पांच चार वर्ष के बाद बात ही आकर के सिखलाते हैं। क्योंकि तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। संगम युग से पहले पुरुषोत्तम शब्द लगाना क्यों बताया गुरु जी? पुरुषों में उत्तम बनाने वाला पुरुष प्रत्यक्ष होता है। पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरुषों में उत्तम पुरुष मान आत्मा, आत्माओं में उत्तम कौन? सुप्रीम सोल। और सुप्रीम सोल बाप जब प्रत्यक्ष होता है तो किस रूप में प्रत्यक्ष होता है? पुरुषोत्तम में। तो तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मनमना भवि है। अगर ये भी जान लिया कि हम कौन से युग में हैं, उसका महत्व भी जान लिया तो भी मेरे मन के संकल्पों में अपने मन के संकल्पों को समा दोगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि बाप पर जाना है। 84 नंबर पूरे हुए और बच्चा तो प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हरेक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं ये भले यहाँ बैठा मैं देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उन्हीं को करता हूँ। बाप को तो बच्चे याद करते हैं और बाप के इन बच्चों को याद करता है, और सर्विसेबल नहीं है उनको क्यों नहीं याद करता? मर्जी मर्जी की क्या बात है? दुनिया में भी बाप होते हैं जो बच्चे लायक होते हैं, बाप का नाम बाला करने वाले होते हैं। हाँ, बाप की प्रॉपर्टी को बढ़ाने वाले हैं, उनकी इंतराश रहती है तो उनको याद करते हैं, ऑटोमेटिक याद आते हैं। तो क्या बाप की स्वार्थी है क्या? है?
अच्छा बनाना चाहता
है तो अच्छा बना, नहीं याद करेगा तब अच्छा बन जाएंगे?
नहीं,
याद करेगा। अरे याद तो वो सबसे करता है, दूसरों को करता ही नहीं। तुम बच्चों को ये याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। उसमें भी खास यहाँ है या बाहर में है। बाबा जानते हैं भले यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जब सर्विसेबल बच्चे हैं उनको याद करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप को भी ये अभिमान है अपने रथ का सोना है, चार है। अच्छा बाप का रथ नहीं है तो फिर ये बात क्यों? फिर तो 500 करोड़ आत्माएं सारे ही मनुष्य आत्माएं बाप के बच्चे हैं, सबको ही याद करके उनको ताकत देनी चाहिए। नहीं बच्चों की बात नहीं, बाप की बात है यहाँ पर कि बाप किन बच्चों को याद करते हैं और उन बच्चों को ही क्यों याद करते हैं, जो सर्विस करने वालों को क्यों नहीं याद करते, और जो सर्विस करने वालों को याद नहीं करेंगे उनका कल्याण नहीं करना है। हाँ सबका बाप है तो सबका कल्याण करेगा ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ, तो फिर याद से याद की नहीं मिलेगी है? नहीं, इस तरफ बच्चे याद कर रहे हैं, उनकी याद की डोरी उधर जुड़ी हुई है, वो अपना कनेक्शन मिला रहे हैं, उधर बाप याद कर रहे हैं उन बच्चों को, तो कनेक्शन किनका मिलेगा? जो सर्विसेबल बच्चे हैं, जिस सर्विस बाप की करने वाले नहीं है, उन्हीं से बाप का कनेक्शन जुट पाएगा। और बाकी को ताकत ताकत नहीं मिलेगी, देखता भी उनको तुमको, जो बाप का नाम बाला करने वाले बाप की सर्विस करने वाले बच्चे हैं उनको देखता हूँ, और डिस्टर्ब करने वालों को देखेंगे भी नहीं। मुरली ने तो बोला है कि मुरली और दृष्टि लेना हर बच्चे का अधिकार है, है? हाँ, जब दे अभिमान होगा, रूहानी स्टेज में नहीं होंगे, दे अभिमानी की स्टेज में होंगे तो बाप से दृष्टि नहीं मिल सकेंगे, तो जब वो बाप को नहीं देखेंगे तो बाप भी उनको नहीं देख सकते। तो याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ, ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है? कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं, अब ऐसे को बाबा देख करके क्या करेंगे? अरे गुणवान होते हैं, अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, प्यारे होते हैं, मीठे होते हैं, उनकी तरफ सब देखते हैं, सबको प्यार आता है, है? नहीं, बहुत से वृक्ष ऐसे होते हैं कि फूल ही फूल उनके होते हैं और नहीं होते हैं। तो देखने में तो अच्छे लगते हैं, दृष्टि को आकर्षित कर लेते हैं, देखते ही रह जाते हैं कि नहीं, लेकिन बाप बाप क्या कहते कि जिनमें कोई गुण नहीं है, अवगुण ही अवगुण है, अब ऐसे को बाबा देख करके क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो चुंबक किसको खींचेगा? कट लगे हुए को है, या जिसमें कट उतर गई है जिस सुई में उसको खींचेगी? फिर बाप किस लिए आया हुआ? कट तो सारी दुनिया में सबको चढ़ी हुई है। इतनी बड़ी दुनिया में जब परमात्मा बाप सुप्रीम सोल आता है तो उस दुनिया में कोई ऐसी आत्मा होती है जिसके ऊपर कप कप न चढ़ी हुई हो? है? फिर
सबको रास्ता दिखाने के लिए, रास्ता बताने के लिए, रास्ता बताने पर भी नहीं चलते।
अब ऐसे को बाबा देख करके क्या करेंगे? बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कथित करेंगे इसको ना, जिन पर कट न चढ़ी हुई हो, जिनकी कट उतरी हुई हो, सत्य प्रधान आत्मा को अपनी तरफ खींचेंगे। अब ये कौन सी आत्मा की बात है? सुप्रीम सोल की बात है या प्रजापिता की बात है? 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 माता पिता की बात है, बाकी सुप्रीम सोल तो सभी आत्माओं का बात है। और आत्मा तो चाहे जैसी भी है, हर आत्मा को सुप्रीम सोल को वापस वापस नहीं जाना है, लेकिन स्वर्ग में वापस किसको ले जाना है और कौन ले जाएगा? प्रजा पिता ले जाएगा, सत्व प्रधान आत्मा को ले जाएगा या सत्व प्रधान आत्मा को ले जाएगा? पहले किन को ले जाएगा? सत्व प्रधान आत्मा को कोशिश करेगा, उनको कोशिश करके उनका अपना संगठन बनाएगा, बाकी दूसरी आत्माओं को साक्षी बनकर। परंतु बाबा अंदर में जानते हैं इनमें क्या क्या गुण है, क्या सर्विस करते हैं, सबको अपना एजुकेशन तो बाप के आगे बताना ही है। एजुकेशन मन धंधा, सर्विस का धंधा है या डिसर्विस का धंधा है? बताना ही है, कोई कंपल्शन है क्या? नहीं बताते, बताओ या ना बताओ वो क्लियर तो हो ही जाएगा। बाप अपना सारा पोता मिल बताते हैं तो बच्चे भी बताए। बाप इतना साफ दिल होकर के आता है, कौन सा बाप? सुप्रीम सोल का कोई पोता मिल है? सुप्रीम सोल का तो कोई पोता मिल है ही नहीं। तो पोता मिल किसका है? जो साकार में बाप है, साकार में बाप होता है प्रजा पिता। साकार मनुष्य शक्ति का जो पिता है, बीज है, वो जब अपना पोता मिल सारा देता है, किसको देता है? जब वो आत्मा ज्ञान में आई होगी तो किसको पोता मिल दिया होगा? जो भी टीचर थे उनको निमित्त बना करके पोता मिल दिया। तो बाप अपना सारा पोता मिल बताते हैं तो बच्चे भी बताएं। अगर नहीं बताते सारा पोता मिल, थोड़ा बहुत नहीं सारा पोता मिल, और अगर बच्चे सारा पोता मिल नहीं बताते, छुपाते हैं, तो क्या होगा? सुई के ऊपर कट चढ़ेगी या बचेगी? और ज्यादा चढ़ेगी, दिन दूनी रात चौगुनी चढ़ती जाएगी। बाप बतलाते हैं, हम तो उनको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तो जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। किसको? जो पुरुषार्थ करता है उसको तो अपना पता होता ही है, किसको पता होना चाहिए? बाप को। बाबा लिखते हैं तभी का एजुकेशन लिख करके भेजो, अथवा उनसे लिखवा करके भेजो कि क्या धंधा करते हैं। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वो सब लिखवा करके भेजती हैं क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं क्या? धन का मन का धन का सारा पोता मिल बाप अपना देते हैं तो फिर बच्चों को भी देना पड़े? बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सच्ची के आज अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सब की अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, बाबा ने एक एक फूल दिखाया, देखो कैसा रायल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी। किसकी बात थी? वैरायटी ही तो जड़ फूलों को थोड़ा ही दिखाया, दिखाने वाला कौन है? बाप। तो चैतन्य फूलों की एक एक की हिस्ट्री वर्तमान समय की पुरुषार्थ की बाबा ने बच्चों को दिखाई, साक्षात्कार कर रहे हैं कि फूल फूल को दिखाया, क्या दिखाया कि फूल फूल को दिखाया या चैतन्य फूल को दिखाया है? एक चैतन्य फूलों का साक्षात्कार कराया या जड़ फूलों का साक्षात्कार कराया? चैतन्य फूलों को साक्षात्कार कराया। अभी ऐसी खुशबू है जब सारा खिल जाएगा तो फसला शोभा हो जाएगी। तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। कौन से फूल की बात बताइए? सारा कौन सा फूल खिल जाएगा? लक्ष्मी नारायण फूल की तरह सारा किया। तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। अभी बने नहीं लेकिन बन जाएंगे। लायक और नालायक की बात क्या बताई? क्वालिफिकेशन क्या बताई? हाँ सुनी की सत्य उतरी हुई है तो सत्व प्रधान, सत्व प्रधान है तो दूसरों को भी क्या बनाएंगे? सत्व प्रधान बनाएंगे। और चढ़ी हुई सत्य है तो दूसरों को भी तमो प्रधान बन डिस्टर्बिस करेंगे, खुद नीचे गिरेंगे दूसरों को भी नीचे गिराएंगे, खुद विपरीत बुद्धि बनेंगे बाप से दूसरों को भी विपरीत बुद्धि बनाएंगे। तो बाप कहते हैं तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। अभी बने नहीं हो क्या? बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, है कि नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं? ले बाप के पास भी भेज दो। बाप के पास भेदभाव क्यों है जब वो सारी गिरी हुई आत्माओं को सुधारने के लिए आया हुआ है? है? इसका जवाब क्या है? फिर
जो करे तो पाए।
देने वाला?
देने वाला नहीं होता है।
हाँ जब रूहानी स्टेज है, मान ली देह अभिमानी की स्टेज नहीं है, बाप के सामने भी देह अभिमान है तो देह अभिमान हुआ ना। तो बाप के सामने भी जब दे अभिमान तो लेंगे कहाँ से? और बाप देगा क्यों? तो जो जैसा है वैसी कैसे करते हैं? ऐसे नहीं कि सबको सैटेलाइट देते हैं। किनको देते हैं? है दे अभिमानी स्टेज में रहने वाले सेंसेबल बच्चों को, दे अभिमानी के स्टेज में रहने वाले बिस्तरी करने वाले बैठक धंधे फेंकने वाले बच्चों को बाप सर्च लाइट नहीं देते। जो ताकत मिले जो जैसा है वैसी कथित करते। बाप सत्व प्रधान होगा तो सत्व प्रधान कथित करेगा, सत्व प्रधान आत्माएं किनको कथित करेंगी? जो सत्व प्रधान वही आत्माएं होंगी उनको कथित करेंगी। इब्राहिम की सोल होगी तो इब्राहिम जैसों को इस्लामियों को कथित करेगी, और स्टालिन लेनिन जैसी सोल होगी तो नास्तिकों को कथित करेगी। तो बाप कैसा है? है? बाप कैसा है? अरे बाप कैसा है कि बताओ गुण उसने सुनाए हुए कैसा गुण सुना तो दसो प्रकार के बच्चों को कथित करेगा? गुण सुना तो बनाई गई नहीं, नस्ल बनाने के लिए आया हुआ है। तो बता दीजिए दुखन भाई बाप तो सब भंगार की चर्चा करेगा। अरे यहाँ तो बोल रहा है कि बाप सबको सर सुनाई तो नहीं देते, किनको देते? सत्य प्रधान युग की रचना करनी है ना, तो सत्य प्रधान युग की रचना करनी है, माला बननी है तो श्रेष्ठ आत्माओं की माला बनेगी या निष्ठ आत्माओं की माला बनेगी? तो किसको कोशिश करेंगे? तो जो जैसा है वही कैसे करते हैं। माला में भी नंबर वाला कोई अब्बल नंबर के हैं, कोई लाख नंबर के हैं, तो फिर उनको कोशिश वैसी गगन जिनका कोई गुण नहीं वो क्या कोशिश करेंगे ऐसे ही कहा चल करके पाई पैसे का पद पा लेंगे कहाँ चल करके सभी संगठन में बनेगा वहां ऐसे ही अगर चलन चलते रहे तो ऐसा ही पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और गुण नजर आते हैं तो प्यार भी करते हैं। प्यार किसको करते हैं? अब गुण वालों को प्यार करेंगे क्या? प्यार में खुशी में बाबा के नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विस कितनी सर्विस करते हैं इनको सर्विस लेकर आराम नहीं मिलता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, याद में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो सारे बुद्धिमान हैं संकट संभालते हैं उनकी एक एक का पोता मिल भेजना चाहिए। स्टूडेंट्स का ही नहीं टीचर्स को भी एक एक का पोता मिल भेजना चाहिए तो बाबा समझे कि कहां तक पुरुषार्थ है। क्योंकि स्टूडेंट्स की जैसी स्थिति होगी तो टीचर्स की भी वैसी स्थिति होगी। स्टूडेंट को देख करके बाबा टीचर को भी समझ जाते हैं, टीचर को देख करके स्टूडेंट का समझ जाते हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं, कोई कितना ज्ञान उठाते हैं गुणवान बनते हैं, बच्चे मालूम पड़ जाते हैं। बाबा का प्यार सब पर है। ये क्या बात हुई, अभी क्या बोला और अब क्या बोल रहे हैं है? क्या बोला? बाबा का प्यार। ये बाबा कौन है और वो बाप कौन है?
बाबा है
शिव बाबा और बाप कौन हुआ जिसके बारे में यहाँ बात की गई वो ब्रह्मा बाबा होगा। अरे ब्रह्मा बाबा ने कष्ट उतरा हुआ उनको कष्ट से किया क्या है? बाप नारायण वाली आत्मा इकट्ठी हो गई दूसरे दूसरे धर्म की, उन्होंने बटोर करके उनके ऊपर कब्जा जमा दिया, हाथ फेल कर दिया। तो ब्रह्मा बाबा की बात है कि उन्होंने कष्ट किया माला बन गई सतम होगी सतो पटना होगी बनी नहीं सकती। बाबा का प्यार सत्तर है ना, शिव बाबा का प्यार सत्तर है, लेकिन बाप का मानो मनुष्य का जो पिता है उसका प्यार सबसे लाख के बच्चों पर जो बाप का नाम बाला बने। दो आत्मा है एक शरीर में, एक सुप्रीम सोल है, उसके लिए मनन चिंतन मंथन के लिए इससे और होगी। और बाप जो मनुष्य का पिता है उसकी मनन चिंतन की इससे और होगी, ये दोनों की एक होगी। अरे शंकर अलग और फिर अलग, ये दोनों एक है।
शिव बाबा,
शिव बाबा जब शिव बाबा कहा जाता है तो शिव बाबा पढ़ाने वाला है, शिव बाबा जो है वो पढ़ाने वाला, शंकर कोई पढ़ाने वाला नहीं है। विश्वनाथ शंकर जिसको कहा जाता है वो कोई पढ़ाने वाला नहीं है।
प्रजापिता
तो प्रत्यक्ष तब कहा जाएगा जबकि पूरी माला तैयार हो जाए, एक सौ आठ आत्मा है प्रैक्टिकल जीवन में उसको अपना बाप स्वीकार कर लें प्रैक्टिकल जीवन में। तुम मौका कहना नहीं, सब में प्रजापिता है और जिनके लिए प्रजापिता है उनकी ऐसी चीज होगी, जिनके लिए वो बाप है नहीं। जिससे कोई सही ये कहा जाता है 99% बाप है 1% हमारा बाप नहीं दिखाई पड़ता, बिल्कुल निश्चय होगा तो पूरा निश्चय होगा कि नहीं साहब बात यही है। और बाप कौन सा सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ऊपर बिंदु थोड़े अलग बैठा हुआ उसका तो कोई ऐसी सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो आत्मा का बाप है वो कोई ऊपर अलग से तो बैठा हुआ नहीं आया कहाँ शरीर में आया हुआ है तो जब शरीर में आया हुआ तो बाबा हुआ कि बाप हुआ
बाप हुआ बाबा
बाबा बता दिया कि बाबा कहा जाता है साकार और निराकार के मिल को बाबा कहा जाता है
वो तो कहा
जो जिसको बाबा कहा शिव बाबा
अभी बाप
बाप तो हुआ प्रजापिता
प्रजापिता
बाप है तो बाप दो एक आत्माओं का बाप देश के बाप दो एक आत्माओं का बाप और एक मनुष्यों का बाप लेकिन जो आत्माओं का बाप है जब तक वो शरीर में प्रवेश न करे तो जैसे जय बिंदु बिंदु बिर्चियों लगा दो अंक न लगाओ कोई तो उसका कोई अस्तित्व नहीं बिंदु याद करने वाले बड़े बिंदु को याद करते रहे बिंदु को याद करते करते उनकी बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी तीखी हो जाएगी बाकी उसमें सतों पर दान का अगर वो नहीं हो सकता वैज्ञानिक बन जाएंगे दुनिया का ध्वंस करने वाले बुद्धि के अहंकारी लेकिन सतों पर दान के नहीं बन सकते कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं कर सकते ये बात यहां की बताई बाबा का प्यार सब पर है पांच करोड़ की जो आत्मा है लास्ट में एक जन्म लेने वाली वो तो उस सबके ऊपर ही बाबा का प्यार लेकिन बाप का प्यार बाप का प्यार प्रजापिता का प्यार ये तो बड़ा राज निकला ऐसे ही इतने प्रकृत नहीं गए बोले राज निकलते जाएंगे इस पर एक गीत है तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से भी प्यार तेरे माने किसके किसके कांटे और किसके फूल और किसके बनाए हुए भाई बाप के बच्चे होते हैं कोई अच्छे बच्चे भी होते हैं और कोई खराब बच्चे भी होते हैं तो बाप के बच्चे ना कोई कांटे भी हैं तो कोई फूल भी है तो कौन से बाप के बच्चे होते हैं जो कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं फिर ज्योति बिंदु उसके बच्चे फिर ज्योति बिंदु के बच्चे तो सरात्मा है आत्मिक तेज वाले उसमें तो कांटे होने की बात है परमान में जितनी भी ज्योति बिंदु आत्मा है कांटा होगी कोई भी कांटा नहीं होगा तो फिर कौन तेरे कांटों से भी प्यार तेरे फूलों से कौन है तेरे 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 से कौन फिर दूस किया गया किसके कांटे और किसके फूल दोनों से मेरे को प्यार है कौन कहता है जो बाबा की सोल सुप्रीम सोल कहती क्या कि तेरे फूलों से भी प्यार तुमने तो पैदा किया फूल भी और तुमने कांटे भी तो है मेरे को दोनों से प्यार नंबर बार तो है ही 500 करोड़ मनुष्य आत्मा है किसकी औलाद तेरी है तो सब नंबर बार ना तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए फिर बाप आ गया तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखा दे ना फरमानी का ना निशान नहीं ना फरमानी करता है इसका मतलब क्या है देह अभिमानी है कि आत्माभिमानी देह अभिमान है ना बन समझे तो बाबा के साथ इनका लव है कौन समझे बाबा भी समझे क्या समझे कि बाबा के साथ इनका लव है उनको कशिश होगी किनको कशिश होगी जिन बच्चों का लव है प्यार है उनको कशिश होगी बाद में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए कौन चटक जाए चिपक जाए वैसे लगी कि आज में कोई पंगी लेने के लिए थी वो तो फट चिपक जाती थी तो किससे चिपक जाती थी बाप से चिपक जाती थी कि अम्मा से अम्मा तो अम्मा
से चिपक जाती थी, हम वहां से चिपक जाते थे। वहां तो कोई कचरे करने न करने की बात है नहीं,
सुने मांगेंगे। आज में जो बातें सब स्थूल में होती है वो अंत में, बेहद में सूक्ष्म होती, बेहद हद की बातें फिर बेहद में चेंज हो जाती। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम अपनी हद के जीवन को बेहद ब्राह्मण जीवन में चेंज कर दो, लौकिक जीवन को अलौकिक में चेंज कर दो। तो जो आदमी में बंदी निकली वो अंत में भी निकलेगी तो जरूर, और निकलेगी तो उस समय, जिस समय निकलेगी तो उस समय वो निकलेगी और बाप से मिलेगी आगे, उस समय वो तत्व प्रधान स्टेरी होगी तत्व प्रधान स्टेरी प्रधान होगी। वो पहले क्या के पुरुषार्थ नहीं करेगा बिंदु को याद करने का, शिव बाबा को याद करने का। हाँ, बाप को याद करके एडवांस में क्यों, पहले ही 76 से पहले निकलेगी और निकल करके वो बाप को याद नहीं करेगी, याद तो करेगी तो याद करने से कट उतरेगी नहीं। बाबा ने तो बोला आत्मा की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बाप से सीखो, आत्मा की सुई की सारी कट उतर जाएगी सब डायरेक्ट बाप से सीखोगे। तो डायरेक्ट बाप आया हुआ वो तभी तो डायरेक्ट सीखोगे, और कट उतरी हुई होगी तभी तो सीखोगे। अगर बाप से मिले ही नहीं तो कट कैसे उतरेगी। अच्छा, मात्र चैतन से पहले कट उतरी नहीं किसी की, चैतन से पहले किसी के कट नहीं उतरी, क्यों नहीं बताया। जब पहले याद का तरीका बताया जो बच्चों की स्टेज थी उसके अनुसार बताया कि लिंगों को याद करो, परमात्मा लिंग है। फिर जब बच्चों की स्टेज उसे जैसी बन गई टोटली, तो फिर बताया कि बिंदु को याद करो, याद की और स्टेज को चढ़ा दिया। तो बिंदु को याद करने से बुद्धि सुखी नहीं होती, उसमें किसी नहीं आएगी। बिंदु तो ज्योतिर्मय में याद करते हैं ना, तो ये गुण नहीं आएंगे। तो कुछ न कुछ कट उतरेगी कि नहीं उतरेगी, उतरेगी। हाँ, तो और बच्चों के मुकाबले जिनकी ज्यादा उतरी हुई होगी वही तो पहले बाप से मिलेंगे। तो आग में जो भंगिनियां थी पहले मिली वो तो स्थूल थी, पर अंत में भंगिनियां निकलती फिर पहले मिलेगी। अरे पहले माँ प्रत्यक्ष होती है, पहले बाप प्रत्यक्ष हो जाता है बच्चों के सामने। तो ये अभी पूछने की बातें रहेंगी, नौ दिन चले लड़ाई गोल। परंतु जब तक कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। कशिश कब होगी, सुई को जब कट उतर जाएगी, तब जो मनुष्यों का पिता बाप है उसके प्रति आकर्षण पैदा होगा। एक एक को देखता हूँ, बाबा को सर्वश्रेष्ठ बच्चे चाहिए, 500 करोड़ को मिलेगा ये अपना नाम ले तो जाएगा। फिर ऐसा क्यों कहा कि सर्वश्रेष्ठ बच्चे चाहिए, हाँ जो नई तत्व प्रधान दुनिया स्थापन होनी है उसमें जिन बच्चों को ले जाना है और जिस बाप को ले जाना है तो कैसे बच्चे चाहिए, सर्वश्रेष्ठ बच्चे चाहिए, जिस सर्विस करने वाले बच्चे नहीं चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, बाप कोई डिफरेंस करने के लिए नहीं आते हैं। बच्चों को पावन बनाते हैं, ये क्या हुई, सर्विस हुई या डिसर्विस हुई, बच्चों को पावन बनाना ही है, डिसर्विस नहीं हुई क्या, प्रजा पिता जो है वो देहधारी है कि नहीं, देहधारी तो है, और देहधारी जो है वो भी कोई देवता है क्या, साकारी है या निराकारी है। प्रजा पिता तो साकार सृष्टि का ही है, तो जब साकार सृष्टि का है और साकार वतनवासियों से मिलता है, जो देह अभिमानी है उनसे मिलता है, तो है तो राम वाली आत्मा ना। राम कृष्ण इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट गुरु नानक संघ के रंग इनको सबको लगता है कि नहीं लगता है, लेकिन जब उस समय लगता था 5000 वर्ष में
आप सत्संग का रंग लगता है, बात तो एक ही है, संग का रंग तो लगता है लेकिन अंतर क्या है? हाँ, उस समय सुप्रीम सोल नहीं थी जो एवर प्योर है, जिसको संघ का रंग नहीं लगता, और अभी अभी उसमें सुप्रीम सोल है, केवल ज्योति बिंदु। तो जितनी कट संघ के रंग से चढ़ती है उसका भी असर दिखाई पड़ता है, और फिर उतनी जब बाप आता है उतर जाती। तो ये तुम जानते हो, दुनिया वाले इन बातों को नहीं समझते, इन बातों कि बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते, क्योंकि अभी तुम बहुत छोड़े हो, तो दुनिया वाले नहीं समझते। जब तुम बहुत ज्यादा हो जाएंगे, हाँ तब समझेंगे। जब तक योग नहीं होगा तब तक कसित नहीं होगी। क्या कसित कब तक नहीं होगी? जब तक तुम्हारा लगाव नहीं होगा, योग माना लगन, लगन की अगन ही नहीं है तो कसित कैसे होगी? वो मेहनत तो बहुत थोड़ी करते हैं, कोई न कोई बात में नटक पड़ते हैं। ये वो सत्संग नहीं है। कौन सा? जो सुना तो सत सत कहते रहते हैं, सत वचन महाराज। क्या क्या वो सत्संग नहीं है? है? क्या यहाँ बाप के जो बच्चे बनते हैं निश्चय पत्र लिखते रहते हैं, लिख करके देते हैं, तो फिर वो सत वचन महाराज नहीं करते रहते हैं कि जो कहा तो सत वचन महाराज नहीं करते? बाप भी करते,
बाप तो कुछ बताते
हैं, बातें बनाते हैं, वो कुछ कुछ नहीं करते हैं। हाँ तो पूछते हैं ना, तो सच हर बात में सच वचन महाराज तो नहीं करते, नहीं करते हैं ना, तो वो सत्संग में सत्संग में फर्क है कि नहीं? वो सत्संग में तो जो गुरु जी कह रहे हैं कि ये बात ऐसे है, फर्क ऊपर है, पाताल में नरक है, तो कैसे का प्रश्न नहीं उठेगा। और यहाँ तो बच्चों की बिंदु को याद करते करते बुद्धि खुल गई, बुद्धि जो है सतो प्रधान बन गई। तो जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती है तो वो फिर प्रश्न करते। हालांकि बाप ने कहा है कि तुम बच्चे बाप से क्या प्रश्न पूछेंगे, तुम पहले कुछ जानते थे क्या? जब तुमने निश्चय कर लिया कि हमारा बाप है, फिर भी तुम प्रश्न पूछते हो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि निश्चय कभी कभी डोलता है, क्योंकि प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रश्न होता है प्रश्न चित्त होने का, कि बुद्धि में संघर्ष चल रहा है, प्रश्न चित्त बने पड़े, और एक है बुद्धि में अपनी में कोई संशय नहीं, लेकिन लेकिन दूसरी आत्माओं को समझाने के लिए पूछते हैं, है तो उसमें भी डिफेक्ट। क्योंकि जो बाप से पूछते हैं इसका मतलब वो मनमना भव की स्टेज में नहीं। अगर मनमना भव की स्टेज में खुद हो तो बाप उनमें खुद प्रवेश करके उस प्रश्न का समाधान कर देगा। रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, बैकबोन, इसलिए बाप से बार बार प्रश्न करते हैं, पूछ जो है वो लगी हुई है। ये वो सत्संग नहीं है जो सुना वो सच सच करते रहते। सर्वशास्त्र में शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप है ही, तो पूरे इस पेज में कौन से बाप की बात की? विश्व के मालिक बनने वाले की, या जो विश्व का मालिक नहीं बनता है उस बाप की? विश्व का मालिक जो बनने वाला बाप नारायण है, उसकी बात हो रही कि नारायण तो नारायण जैसी आत्माओं को ही कर्षित करेगा, दूसरी आत्माओं को कर्षित दास दासी बनने वाली आत्माओं को कर्षित नहीं करेगा, प्यार भी नहीं करेगा। जब तक उस स्टेज पर है, किसी स्टेज पर उदास होने की स्टेज पर, रोने डकारने की स्टेज पर, तब तक प्यार कैसे करेगा? बाप रोने वाले बच्चों को पसंद करता है क्या? बाप तो और उल्टा कहता, रोने वाले मेरे युगल नहीं बन सकते। कहाँ सत्य परम धाम में युगल बनेंगे जाएंगे क्या? कहाँ की युगल बनने की बात? संगम पर ही, संगम पर भी, और सत्यु त्रेता बाप कल युग में, क्योंकि हर जन्म की शूटिंग तो यहाँ हो रही, डायवोर्स देने की शूटिंग भी यहाँ होती, तो मन बुद्धि का सारा खेल है, मन के संकल्पों से ब्रह्मा ने शक्ति रखी, तो ब्राह्मण भी मन के संकल्पों से अपनी अपनी शक्ति रख रहे। तो विश्व का मालिक तो बात यह है, बच्चों को कहता रहता हूँ।
दूसरा पेज,
गीता से ही प्रभाव निकलेगा। क्या कहता रहता हूँ, प्रभाव किससे निकलेगा? गीता माता से। क्यों? क्योंकि गीता पति बाप का कनेक्शन पहले पहले किससे है? गीता माता से, लेकिन पहले बच्चों से। पहले तो माता है ना, तो माता को तो फुल रिगार्ड देना पड़े क्या? अगर फुल रिगार्ड न दिया, माता को रिगार्ड नहीं दिया, तो जैसे बाप का डिसरिगार्ड, माता को पैड़ी व्यक्ति से देगा, तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हुआ? बाप का डिसरिगार्ड रिगार्ड, तो बिल्कुल सत्यानाश कर दिया। पर निश्चय पत्र लेने मात्र से नहीं मानेंगे कि लिख लिख करके दे दो बस हो गया, हम बच्चे बन गए। बच्चे और लुच्चे में फर्क होता है, और बाप उस फर्क को अच्छी तरह समझता है। तो गीता माता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी हो ना, क्या कौन सी ताकत कि माता को माता समझे?
ऐसे नहीं कि बाप को याद करने के बजाय गऊ मुख में ही बुद्ध रूपी हाथ घुसा रहे। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं भगत, याद करेंगे राम 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 और हाथ पांव घुसो हो गऊ मुख में, वह मुख बड़ो प्यारो लगत उन्हें।
अरे तुम राम बाप को याद करो ना, बाप को याद करते करते कहां पहुंच जाते? तो परंतु प्रभाव तो निकलेगा, लेकिन इतनी ताकत तो चाहिए ना, इतनी ताकत कुछ माता को माता के रूप में देखें। योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोरी है, काय में कमजोरी है, योग बल में कमजोरी है, और प्रबलता काय में है, भोग बल में। भोग बल तो झट खींच लेता है, त्रेसठ जन्मों के हिसाब किताब है, तो यहाँ झट सामने उभर आते हैं, बाप तो पहचान लेता है। तो योग बल का जौहर अच्छा चाहिए, जिसमें बहुत कमजोरी है, थोड़ी बहुत कमजोरी नहीं है, बहुत। अभी थोड़ा टाइम है, पहले रात हो रहे, अभी थोड़ा टाइम है। ये ब्राह्मणों का किला ऐसा बन जाएगा, शीशे का महल, जिसमें एक भी भिखारी पांव रख नहीं सकेगा। कैसे हैं मिथुरा, बुरा तो बुरा है क्या? मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं।
क्या मुझे तुम प्यार नहीं करते? और देवी मैया के पीछे तो जय माता दी पिताजी की याद ही नहीं आती। तो बाप कहते हैं मैं भी तुमको प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मुरली में तो सांप बोल दिया, देवी के भगत हैं रावण संप्रदाय।
रावण भी क्या करता था? एक तरफ शिव की भी पूजा करता था, लेकिन जब शिव की पूजा से नहीं काम चला, तो सोचा कि शक्ति को अपने बगल में कर लूं। है तो शिव की शक्ति, लेकिन शिव से काम नहीं चल रहा है, तो अब क्या करूं? ये प्योरिटी की पावर अपने हाथ में आ जाएगी, तो फिर हमें शिव की भी दरकार दरकार नहीं, फिर हम भगवान से भी चक्कर ले लेंगे। मीठा धीरे धीरे घुलता है, एकदम घुल जाता है। मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं, मुझे नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नहीं करूंगा। तो ये देहधारियों की बात है या सुप्रीम कोर्ट की बात है? तो देहधारियों की बात है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, सारस लाज करें सब रीति। जिनको रस है उनको सारस तो जरूर होगा। एक सुप्रीम सोल ऐसा है जिसको कोई कामना कामना, लेकिन एक ही शरीर में दोनों है, निष्कामी भी तो कामना वाला भी। तुम सर्विस करो ना करो, शिव बाबा तो तुमको ले जाएगा क्या? लेकिन प्रजापिता की मेंटलिटी क्या है? सर्विस करोगे तो मैं तुमको प्यार करूंगा, सर्विस को नहीं करोगे, मेरी डिस सर्विस करोगे, मेरा नाम बदनाम करोगे तो मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा। लक्ष्य नहीं है अभी थोड़ा टाइम है तो ये है आत्मा का लव। क्या मुझे प्यार करो तो मैं भी प्यार करूं, ये किसका लव है? परमात्मा सुप्रीम सोल का लव नहीं है ये आत्माओं का ये लव ऐसा है कि मुझे प्यार करोगे तो मैं भी तुम्हें प्यार करूंगा। तुम नहीं प्यार करोगे तो लव पसंद किस तरह मैं तुम्हारे पीछे पीछे नहीं फिरता करूंगा। अदला बदला ले लेते, अदला बदला इस दुनिया में है कर्मों का हिसाब किताब। ऐसा कहीं हो सकता है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच के कर्मों का अदला बदला न हो? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा है जो कर्मों का हिसाब किताब न करती हो चुप?
तो अदला बदला तो है, ये दुनिया ही अदले बदलेगी। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते, याद किसकी रहे? ये नहीं कहा प्रजापिता की याद रहे, एक बाबा की याद। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। तो बाबा समझ लो बिंदु को। बिंदु कोई बाबा नहीं होता, ग्रैंड फादर नहीं होता। बिंदु का तो सिर्फ संबंध बाप है, वो भी आत्माओं का बाप। उसकी भी कोई वैल्यू नहीं जब तक शरीर में प्रवेश न करे, तब तक जड़ है। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते हैं, बाप समझाते हैं। यहाँ भक्ति की बात नहीं है, क्या यहाँ प्यार करने की बात है, प्रीति जुटाने की बात है, लगन लगाने की बात है? यहाँ कोई भक्ति करने की बात नहीं है। भक्ति तुम करो न करो, ये कोई जरूरी नहीं कि तुम शिवलिंग की भक्ति करो, यही बहुत बड़ी बात है, मत करो। लेकिन प्रीति बुद्धि होकर रहो, सर्विस तो करो, डिससर्विस तो न करो, सर्विसेबल बनो। बाप देखेंगे कि ये सर्विसेबल बच्चा है ना, बाप का नाम बाला करता है, देह की पूजा नहीं करता, तो कोई हर्जा है क्या है? अरे देह की स्थूल पूजा करने वाले ढेर निकल आएंगे। ढेर भगत होते हैं जो शिवलिंग के ऊपर बस चिकनाते हैं, चिकनाते ही रहते हैं, है? पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानते, स्त्रोत्र वित्रो तो कुछ नहीं जानते, है? तो यहाँ भक्ति की बात नहीं है, ये बाबा का रथ है। भक्ति तो कहते हैं अंधश्रद्धा युक्त जो होती है उसे कहते हैं भक्ति, क्या? और शिवलिंग को जाकर के सेवा सुशूषा करते हैं तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है या ज्ञान है? वो तो अंधश्रद्धा युक्त भक्ति है, क्यों? पत्थर का लिंग थोड़े कुछ करेगा। इस दुनिया का परिवर्तन करने के लिए तो जरूर चैतन्य लिंग है। चैतन्य कौन सा लिंग? जिस शरीर में परमात्मा प्रवेश करता है, ज्योति बिंदु। लिंग अलग चीज और बिंदु सुप्रीम सोल, बिंदु अलग चीज। तो यहाँ कोई भक्ति की बात नहीं है, ये बाबा का रथ है, क्या? ये शिव बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये मीडिया है किनके द्वारा? हाँ, शिव बाबा नहीं कहते हैं कि मेरे पांव धोकर के पियो, क्या? ये नहीं कहते मेरे पांव धोकर के पियो, उनके पांव होते भी हैं। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। किसको? स्थूल पांव को कि बुद्धरूपी पांव को? किसको हाथ नहीं लगाने देते? बुद्धरूपी हाथ भी होता है, बुद्धरूपी पांव भी होता है। वो तो भक्ति मार्ग में ऐसे स्थूल हाथों से स्थूल पांव को छूते हैं, उसका अर्थ क्या है? बुद्धरूपी हाथ से बुद्धरूपी पांव का स्पर्श करना, पांव से भी पहुंचा जाता है, बुद्धि से भी कहीं पांव, कहते ना तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। हाथ से कोई चीज पकड़ी जाती है, कहते ना तुम्हारी बुद्धि कैच नहीं कर सकती। तो जैसे हाथ कैच करता है, बुद्धि भी कैच करती है किसी बात को, तो कौन सा पांव नहीं छूने देते? बुद्ध रूपी पांव नहीं छूने देते, टच ही नहीं करने देंगे। हाँ, स्थूल पांव की यहाँ बात है कि बाप को स्थूल पांव छूने नहीं देते। ये तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा? 20 बार पांव पढ़ते रहो उससे क्या होगा? कुछ नहीं, पढ़ाई पढ़ो, जो कहता हूँ उस बात को मानो। बात तो है सबकी सदगति करने वाला। कोटों में कोई ही ये बात समझते हैं। क्या बात, क्या बात समझते हैं? कि बाप सबकी सदगति करने वाला है, किसी की दुर्गति करने वाला नहीं है। सदगति सबकी करेगा, क्यों? 500 करोड़ का बाप है तो क्या खुद ही सदगति में जाएगा? अपने बच्चों को नहीं ले जाएगा? वो अम्मा बाप कैसे जो खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करें और बच्चों को नरक में ढकेल ले? ये तो सतयुग स्थापन करने वाला बाप है ना, देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता है ना। तो बाप कहते हैं कि मैं सबकी सदगति करने वाला हूँ। कोटों में कोई ही इस बात को समझते हैं क्या? कि बाप सबकी सदगति, नहीं तो क्या समझते हैं? ये हमारी दुर्गति कर रहा है। नहीं, अब तुम हूँ मालूम मालूम पड़ी। याद रखियो, कौन पाटीराम बोल रहे? हाँ, आज की कैसे तुम? पाटीराम कह रहे हैं कि हम इस बात को नहीं समझते कि बाप दुर्गति कर सकता है। अब बाप कहते हैं कोटों में कोई ही ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं कि बाप सदगति करने आया हुआ है, सबकी सदगति करने वाला है। तो पाटीराम तो हो गए कोटों में से कोई। क्यों पाटीराम? अरे ये क्या बात, दोनों में नहीं कर दिया तो उसको कुछ भी नहीं बचा। कोटों में कोई ये बात समझते हैं, जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे क्या? कि बाप सबकी सदगति करने वाला है, किसी की दुर्गति बाप? कोई बाप ऐसा होता है जो अपने बच्चों की दुर्गति चाहता हो? कोई अम्मा बाप दुनिया में ऐसे नहीं होते। हर बाप ये चाहता है बच्चा मेरे से भी आगे आगे बढ़ जाए। बाप टीचर और गुरु का संबंध ही ऐसा होता है। टीचर भी ये चाहेगा कि ये मेरे से भी पढ़ करके ऊंचा होशियार ऊंचे पद पर आसीन हो जाए। गुरु भी क्या चाहता है? हाँ, हमारा चेला हम उसे बड़ो ऊंचो गुरु बन जाए, मठ मंडेश्वर बन जाए।
अभी तो बजाय पिता बाप ने कहा कि जो बच्चों का कट उतरा रहेगा उसी को मैं सरकार देता हूँ।
कट उतरा रहेगा,
जिसका कट उतरा रहेगा, जो सत्सुवीर बच्चे होंगे, लायक बच्चे होंगे, नालायक को मैं नहीं
देखता। नहीं, मैं देखता ही नहीं उनको, सकाश ही नहीं देता उनको, दृष्टि ही नहीं देता, देखने की इच्छा ही नहीं होती।
नहीं हुआ
क्या हुआ?
प्रजापिता दो तरह से देखता है, एक बाप है जो 500 करोड़ का।
तो जब एक शरीर में दो है, तो एक शरीर में दो ना, एक तो सुप्रीम सोल है,
वो तो 500 करोड़ की सदगति करता है।
सदगति करता है 500 करोड़ की सदगति, खुद सदगति में जाता है। जो खुद ही सदगति में नहीं जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता, दूसरों की सदगति कैसे कर देगा? क्या धक्का देके ढकेल लेगा?
तो सदगति
भाई, जो खुद है चोर होगा तो दूसरों को चोरी की पढ़ाई पढ़ाएगा, जो खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद नारायण बनने वाला होगा तो दूसरों को नारायण समान बनाएगा।
500 करोड़
मिले, तुम यही नहीं जानते? एक जन्म के लिए हर आत्मा की सदगति होती है। जब आत्मा ऊपर परमधाम से नीचे उतरती है तो जिस शरीर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करने वाली क्रैश वाली आत्मा को दुख महसूस नहीं हो सकता। तो हर आत्मा को सदगति का वर्षा मिलना, और जिसकी अपनी सदगति ना हो तो दूसरों की सदगति कैसे करेगी? शिव तो मुक्ति धाम में रहने वाला है कि जीवन मुक्ति में भी आता है? तो जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर के भोली भोली माताओं को ज्ञान दे करके उठाते। बच्चों को तो पहले ही बता दिया, तब दुर्योधन दुशासन यज्ञ के आदि में भी कोई नहीं बचे, सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाई थे, सब विरोध करके चले गए, क्योंकि पुरुष ही दुर्योधन तो उनको इस बात को सहन ही नहीं होता। काम बेकार की बात, जरूर उल्टे हो जाएंगे।
आज क्रम है, माताओं से रिश्ता है पांडव,
आदि में हुए थे तो अंत में भी होते हैं। दिल्ली में जब एडवांस पार्टी का संगठन टूटता है तो एक भी भाई मौजूद, सब विरोधी हो जाते हैं। तो दुर्योधन तो शासन हुए थे नहीं, इसलिए हिंसक और अहिंसक वाले चित्र में प्रदर्शनी अंक में क्या दिखाया?
माता दिखाई
कन्या माताओं के संगठन के बीच में बाबा खड़ा हुआ, उंगली उठा भर सारो किनको कौन किनको? वो सब पुरुष हैं कि स्त्रियां भी उनमें? कोई राक्षसी भी देखी? सब दुर्योधन दुशासन तो भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर के उठाते हैं, बाबा बिल्कुल ऊपर चढ़ा देते हैं,
भारत माताओं का गायन है,
मुक्ति और जीवन मुक्ति में चढ़ा देते हैं। किसको?
भोली
भोली माताओं को। बाप सिर्फ कहते हैं कि विकारों को छोड़ो, ऊंचा तो उठा देते हैं लेकिन करो क्या? सिर्फ जो विकृति है, दूध में पानी मिक्स मत करो, दूध को दूध ही रहने दो, पानी मिक्स होगा दूसरा तब तो, जब उसमें मिक्स होगा तो विकृति आ जाएगी। तो एक बाप के बने रहो तो बस एक बाप से ही संबंध जोड़ो। काय का, तन का, मन का, धन का, समय का, संपर्क का, संबंध का, कर्म इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का अगर दूसरे से संबंध जोड़ते रहे तो मिक्स जरूर होगा, और जब मिक्स होगा तो क्या होगा? विकृति। विकृति छोड़ी, विकार छोड़े कि ग्रहण किए? ग्रहण हुए। संघ का रंग लगता नहीं कर्मेंद्रियों का?
अच्छा तो
है। फिर क्या बात?
कर्मेंद्रियों
का संघ करना, जो जिनका हिसाब किताब होगा प्रजापिता के साथ वो तो जरूर करेंगे। 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ उदय होगा कि नहीं? अच्छा अच्छा क्या? अरे 63 जन्मों में कुछ विशेष आत्माएं ऐसी भी तो हैं जो रामकृष्ण की आत्माओं के साथ है, प्रैक्टिकल में संघों साथ अंग संग रही हैं, तो जो वहां अंग संग रही हैं वो यहां अंग संग शूटिंग पीरियड में नहीं होंगी?
जरूर होंगी।
ये प्रश्न किसका था?
अरुण
भाई का था। चलो गनीमत है, कम से कम बाप के साथ ही कर्मेंद्रियों का संघ की बात बुद्धि में आ रही है। क्या क्या गनीमत है? बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। क्या छोड़ो? सिर्फ विकारों को छोड़ो। बाप तो बहुत ऊपर चढ़ाने के लिए आए, इस पर ही हंगामा होता है। सारा हंगामा चाहे यज्ञ में चाहे दुनिया में, सब विघ्नों की जड़ कहाँ से पैदा होती?
विकार,
काम विकार, यही सबसे बड़ा विघ्न है। यज्ञ के अंदर जितने भी झगड़े टंटे होते रहे, किस बात पर होते रहे, ये काम विकार है जो विघ्न पैदा करता रहा। बात समझाते हैं अपने को, देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है, रोज रात को देखो, सवेरे को नहीं है? सवेरे को बाप को याद करो और रात को सारे दिन के अपना पोता मिल देखो। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मिल कायदे वो फायदे और घाटे का निकालते, तुम भी पोता मिल रखो कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया? देखेंगे कम याद किया तो आप ही लग जाएगी। क्या बाबा हमको विश्व का मालिक बनाने आया है? बाबा तो बार बार कहता राज करेगा खालसा। कौन राज करेगा?
खालसा,
खाले। कभी ये कहा कि आप पवित्र राज करेंगे?
नहीं,
नहीं? खालिस मन, खालिस मन पवित्र। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया?
पांच करोड़ मनुष्य आत्माओं में से ऐसी एक भी मनुष्य आत्मा है जो कर्मों का हिसाब किताब न करती हो चुक तू? तो अदला बदला तो है, ये दुनिया ही अदले बदले की। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विक्रम विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। याद किसकी रहे? ये नहीं कहा प्रजापिता की याद रहे, एक बाबा की याद। बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को। तो बाबा समझ लो बिंदु को। बिंदु कोई बाबा नहीं होता, ग्रैंड फादर नहीं होता। बिंदु का तो सिर्फ संबंध बाप है, वो भी आत्माओं का बाप। उसकी भी कोई वैल्यू नहीं जब तक शरीर में
سینس نہ کرے تب تک جڑ ہے. کوئی تو بالکل یاد نہیں کرتے ہیں, بات سمجھاتے ہیں. یہاں بھکتی کی بات نہیں ہے. کیا یہاں پیار کرنے کی بات ہے, پریتی جٹانے کی بات ہے, لگن لگانے کی بات ہے. یہاں کوئی بھکتی کرنے کی بات نہیں ہے. بھکتی تم کرو نہ کرو, یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم شیولنگ کی بھکتی کرو. یہ بہت بڑی بات ہے, مت کرو. لیکن پریت بدھی ہو کر رہو, سروس تو کرو. ڈس سروس تو نہ کرو, سروسیبل بنو. باپ دیکھیں گے کہ یہ سروسیبل بچہ ہے, نہ باپ کا نام بالا کرتا ہے, دیہ کی پوجا نہیں کرتا ہے, تو کوئی ہرجہ ہے کیا؟ ارے دیہ کی سور پوجا کرنے والے ڈھیر نکل آئیں گے. ڈھیر بھگت ہوتے ہیں جو شیولنگ کے اوپر بس چکناتے چکناتے ہی رہتے ہیں, پڑھنا لکھنا کچھ نہیں جانتے, استوتر وتر تو کچھ نہیں جانتے. تو یہاں بھکتی کی بات نہیں ہے, یہ بابا کا رتھ ہے. بھکتی تو کہتے ہیں اندھا یوکت جو ہوتی ہے اسے کہتے ہیں بھکتی. کیا اور شیولنگ کو جا کر کے سیوا سسورسا کرتے ہیں تو اندھا یوکت بھکتی ہے یا جان ہے؟ وہ تو اندھا یوکت بھکتی ہے, پھر وہ پتھر گلی میں تھوڑے کچھ کرے گا. دنیا کا پریورتن کرنے کے لیے تو ضرور چیتنیہ لنگ ہے. چیتنیہ کون سا لنگ؟ جس شریر میں پرماتما پرویش کرتا ہے, جت بندو. لنگ الگ چیز اور بندو, سپریم سول بندو الگ چیز. تو یہاں کوئی بھکتی کی بات نہیں, یہ بابا کا رتھ ہے. کیا؟ یہ شیو بابا کا رتھ ہے. ان کے دوارا شیو بابا پڑھاتے ہیں. یہ میڈیا ہے ان کے دوارا. ہاں شیو بابا نہیں کہتے ہیں کہ میرے پاؤں دھو کر کے پیو. کیا یہ نہیں کہتے میرے پاؤں دھو کر کے پیو؟ ان کے پاؤں ہوتے بھی ہیں. بابا تو ہاتھ لگانے بھی نہیں دیتے. اس کو چن پاؤں کو بدھ روپی پاؤں کو کس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے؟ بدھ روپی ہاتھ بھی ہوتا ہے, بدھ روپی پاؤں بھی ہوتا ہے. وہ تو بھکتی مارگ میں ایسے تھول ہاتھوں سے تھول پاؤں کو چھوٹتے ہیں. اس کا ارتھ کیا ہے؟ بدھ روپی ہاتھ سے بدھ روپی پاؤں کا اسپرش کرنا. پاؤں سے بھی پہنچا جاتا ہے, بدھی سے بھی کہیں پاؤں. کہتے ہیں تمہاری بدھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہاتھ سے کوئی چیز پکڑی جاتی ہے, کہتے نا تمہاری بدھی کیچ نہیں کر سکتی. تو جیسے ہاتھ کیچ کرتا ہے, بدھی بھی کیچ کرتی ہے کسی بات کو. تو پاؤں تو پاؤں نہیں چھونے دیتے, بدھی روپی پاؤں نہیں چھونے دیتے, کیچ نہیں کرنے دیں گے. ہاں استھول پاؤں کی یہاں بات ہے کہ باپ کوئی استھول پاؤں چھونے نہیں دیتے. یہ تو پڑھائی ہے, ہاتھ لگانے سے کیا ہوگا؟ 20 بار پاؤں پڑھتے رہو اس سے کیا ہوگا؟ کچھ نہیں. پڑھائی پڑھو, جو کہتا ہوں اس بات کو مانو. باپ تو ہے سب کی سدگتی کرنے والا. ہو تو میں کوئی یہ بات سمجھتے ہیں. کیا بات, کیا بات سمجھتے ہیں؟ کہ باپ سب کی سدگتی کرنے والا ہے, کسی کی درگتی کرنے والا نہیں ہے. سدگتی سب کی کرے گا. کیوں 500 کروڑ کا باپ ہے تو کیا خود ہی سدگتی میں جائے گا؟ اپنے بچوں کو نہیں لے جائے گا. وہ اما باپ کیسے جو خود سورگ میں جانے کا پرچارتھ کر رہا ہوں, بچوں کو نرک میں ڈھکیل لیں؟ یہ تو سچو استھاپن کرنے والا باپ ہے نا.
देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने वाला धर्म पिता है ना। तो बाप कहते हैं कि मैं सबकी सदगति करने वाला हूँ। कोटों में कोई ही इस बात को समझते हैं क्या कि बाप सबकी सदगति, नहीं तो क्या समझते हैं ये हमारी दुर्गति कर रहा है। अब तुम हूँ मैं मालूम पड़ी, याद रखियो कौन पातीराम बोल रहे। हाँ आज की कैसे तुम पातीराम कह रहे कि हम इस बात को नहीं समझते कि बाप दुर्गति कर सकता है। अब बाप कहते हैं कोटों में कोई ही ऐसे बच्चे हैं जो इस बात को समझते हैं कि बाप सदगति करने आया हुआ है, सबकी सदगति करने वाला है। तो पातीराम तो हो गए कोटों में से कोई। क्यों पातीराम? अरे क्या बात, दोनों में नहीं कर दिया तो उसको एक कुछ भी नहीं लगा है? कोटों में कोई ये बात समझते हैं जो कल पहले वाले होंगे वो ही समझेंगे क्या कि बाप सबकी सदगति करने वाला है, किसी की दुर्गति बाप, कोई बाप ऐसा होता है जो अपने बच्चों की दुर्गति चाहता हो? कोई अम्मा बाप दुनिया में ऐसे नहीं होते। हर बाप ये चाहता है बच्चा मेरे से भी आगे आगे बढ़ जाए। बाप टीचर और गुरु का संबंध ही ऐसा होता है। टीचर ये चाहेगा कि ये मेरे से भी पढ़ करके ऊंचा हो, चार ऊंचे पद पर आसीन हो जाए। गुरु भी क्या चाहता है? हाँ हमारे चेला हम उस बड़ो ऊंचो गुरु बन जाए। मठ मंडेश्वर बन जाए।
अभी तो मेरे पिता बाप ने कहा कि जो बच्चों का कद उतरा रहेगा उसी को मैं सरकार देता हूँ।
कद उतरा रहेगा,
कद उतरा रहेगा, बच्चे होंगे लायक बच्चे होंगे, नालायक को मैं नहीं
देखता। नहीं मैं देखता ही नहीं, उनको सकाश ही नहीं देता, उनको दृष्टि ही नहीं देता, देखने की इच्छा ही नहीं होती। क्या हुआ?
प्रजापिता दो तरह से देखता है, एक बाप है जो
5 करोड़
का।
तो जब एक शरीर में दो हैं, है तो एक शरीर में दो ना, एक तो सुप्रीम सोल है,
वो तो 5 करोड़ सदगति करता है।
सदगति करता है 5 करोड़ की सदगति, खुद सदगति में जाता है। जो खुद ही सदगति में नहीं जाता है, स्वर्ग में नहीं जाता, दूसरों की सदगति कैसे कर देगा? क्या धक्का देकर ढकेल देगा? सदगति भाई जो खुद है चोर होगा तो दूसरों को चोरी की पढ़ाई पढ़ाएगा, जो खुद डॉक्टर होगा तो दूसरों को डॉक्टर बनाएगा, खुद नारायण बनने वाला होगा तो दूसरों को नारायण समान बनाएगा।
500 करोड़
हुए तुम यही नहीं जानते? एक जन्म के लिए हर आत्मा की सदगति होती है। जब आत्मा ऊपर परम धाम से नीचे उतरती है तो जिस शरीर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करने वाली क्राइस्ट वाली आत्मा को दुख महसूस नहीं हो सकता। तो हर आत्मा को सदगति का वर्तन मिलना, और जिसकी अपनी सदगति न हो तो दूसरों की सदगति कैसे करेगा? शिव तो मुक्ति धाम में रहने वाला है कि जीवन मुक्ति में भी आता है। तो जो कल पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर के भोली भोली माताओं को ज्ञान दे करके उठाते हैं। बच्चों को तो पहले ही बता दिया सब दुर्योधन दुशासन है। यज्ञ के आदि में भी कोई नहीं बचे, सारे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाई से सब विरोध करके चले गए। तो वो पुरुष नहीं दुर्योधन तो उनको इस बात को सहन ही नहीं होता। काम विकार की बात में जरूर उल्टे हो जाएंगे।
माताओं से भी सहा
पांडव आगे में हुए थे तो अंत में भी होते हैं। दिल्ली में जलाई डांस पार्टी का संगठन टूटता है तो एक भी भाई मौजूद सब विरोधी हो जाते हैं। तो दुर्योधन तो शासन हुए नहीं, इसलिए हिंसक और अहिंसक वाले चित्र में प्रकृति ने तुम्हें क्या दिखाया है?
माता दिखाई,
कन्या माताओं के संगठन के बीच में बाबा खड़ा हुआ और उन्हें उठा भारत सारे किनको कौन किनको वो सब पुरुष है की स्त्रियाँ भी उनमें कोई राक्षसी भी देखी सब दुर्योधन दुशासन तो भोला नाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर के उठाते हैं बाबा बिल्कुल ऊपर चढ़ा देते हैं।
भारत माताओं का गायन है
मुक्ति और जीवन मुक्ति में चढ़ा देते हैं किसको भोली भोली माताओं को। बाप सिर्फ कहते हैं कि विकारों को छोड़ो ऊंचा तो उठा देते हैं लेकिन करो क्या करके जो विकृति है दूध में पानी मिक्स मत करो दूध को दूध ही रहने दो पानी मिक्स होगा दूसरा तब तो जब उसमें मिक्स होगा तो विकृति आ जाएगी। तो एक बाप के बने आओ तो बस एक बाप का समय का संपर्क का संबंध का कर्म इंद्रियों का ज्ञान इंद्रियों का अगर दूसरे से संबंध जोड़ते रहे तो मिक्स मिक्स जरूर होगा और जब मिक्स होगा तो क्या होगा विकृति विकृति छोड़ी विकार छोड़े कि ग्रहण किए ग्रहण
कर्म
का रंग लगता नहीं कर्म इंद्रियों का फिर क्या बात
कर्मेंद्रियों
जो जो जिन जिनका हिसाब किताब होगा प्रजापिता के साथ वो तो जरूर करेंगे 63 जन्मों का हिसाब किताब यहाँ उदय होगा कि नहीं। अच्छा अच्छा क्या अरे 63 जन्मों में कुछ विशेष आत्मा ऐसी भी तो है जो रामकृष्ण की आत्माओं के साथ प्रैक्टिकल में संगो साथ अंग संग रही है तो जो वहाँ अंग संग रही है वो यहाँ अंग संग शूटिंग पीरियड में नहीं होंगी जरूर होंगी। ये प्रश्न किसका था
है?
अरुण भाई का था। चलो गर्मी में कम से कम बाप के साथ ही कर्मेंद्रियों का संग की बात बुद्धि में आ रही क्या क्या गर्मी में हाँ बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो क्या छोड़ो सिर्फ विकारों को छोड़ो बाप तो बहुत ऊपर चढ़ाने के लिए आए इस पर हंगामा होता है सारा हंगामा चाहे यज्ञ में चाहे दुनिया में सब दुर्गुणों की जड़ कहाँ से पैदा होती विकार काम विकार यही सबसे बड़ा विघ्न है। यज्ञ के अंदर जितने भी झगड़े टंटे होते रहे किस बात पर होते रहे ये काम विकार है जो विघ्न पैदा करता रहा। बाप समझाते हैं अपने को देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है रोज रात को देखो सवेरे को नहीं है सवेरे को बाप को याद करो और रात को सारे दिन के अपना पोता मेल देखो। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे वो फायदे और घाटे का निकालते हैं तुम भी पोता मेल रखू कि कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया देखेंगे कम याद किया तो आते ही लग जाए क्या बाप को विश्व का मालिक बनाने आया है। बाबा तो बार बार कहता है राज करेगा खालसा कौन राज करेगा खालसा खाले कभी ये कहा कि आप पवित्र राज करेंगे नहीं खाले माना खालिश माना पवित्र हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया स्वर्ग भी है सारी शक्ति में सबसे वंडरफुल क्या वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है स्वर्ग और जो दुनियावी वंडर है वो तो 7 वंडर प्रसिद्ध है लेकिन उन सब 7 वंडर से भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या है हेवन। जैसे ताजमहल है चीन की दीवार है झूमते मीनारे हैं हाँ ये सात जो बड़े बड़े चीजें हैं दुनिया की देखने के लिए जो लोग देखने जाते हैं नहीं। तो स्वर्ग भी है सारी शक्ति में सबसे वंडरफुल और बनाने वाला भी है सबसे वंडरफुल। क्या बोला है वंडरफुल के बारे में
बनाने वाला?
हाँ, शंकर का पार्ट है ऐसा वंडरफुल जो तुम बच्चे समझ भी न कर विश्वास भी न कर सको। कभी भी मन से तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क हो जाता है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। हाँ, कौन से रजिस्टर में दूसरा पेज मध्य में जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। कुर्बान जाने माने बलिहार जाते हैं। क्यों? पुराने भक्तों ने ऐसा क्या खास किया और नए भक्तों ने क्या नहीं किया? पुराने भक्तों की क्या विशेषता है? उन्होंने सतो प्रधान भक्ति की है, एक शिवलिंग की भक्ति की है, दूसरे किसी देवदारी की भक्ति नहीं की। तो जिनके अंदर ये पक्का भरा हुआ है आदि का भक्ति का सतो प्रधान संकल्प, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो पुराने भक्तों से बाबा की बहुत बहुत प्रीति। इसलिए अर्गतवाणी में टीचर से पूछा बाबा ने, टीचर्स ने आज की भक्ति की है अर्गतवाणी में, तो अर्गत बाप दादा ने जिनके सामने वहां पूछा है तो जवाब देने वाले तो सामने वाले होंगे या दूर बैठने वाले? सामने वाले होंगे। तो जो सामने वाले होंगे उनके लिए सोचा जाए क्या उन्होंने सतो प्रधान भक्ति की है, क्योंकि सात नारायणों के फॉलोअर्स हैं, कृष्ण के और सत्य नारायण के फॉलोअर्स उसमें बहुत थोड़े हैं। तो मोस्टली टीचर्स कैसे हुए? जैसे टीचर्स होंगे वैसे स्टूडेंट भी होंगे। तो पूछा टीचर्स ने की है, किंतु बहुत से तो ऐसे होंगे जो आदमी कन्वर्ट हो गए किस धर्म में? इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म। तो जो इन धर्मों में कन्वर्ट हो गए उन्होंने भक्ति तो शिवलिंग की भक्ति तो की नहीं, तो उनके अंदर संस्कार एक बात दूसरा न कोई के संस्कार होंगे ही नहीं। तो बाबा कुर्बान जाते हैं पुराने भक्तों के ऊपर, अति भक्ति की है ना। सतो प्रधान भक्ति भी कैसी की? अति की। बाबा इस दिन में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। क्या क्या करता था बाबा? एक तरफ गीता माता को उठाता था और दूसरी तरफ नारायण बाप का चित्र भी रखता। इस जन्म में भी, इस जन्म में भी माने किस जन्म में? लास्ट जन्म में। तो लास्ट जन्म में भी बताया हाँ कि एक तरफ गीता और दूसरी तरफ नारायण का चित्र भी रखता था। तो दोनों कौन हुए? दोनों मिलके कौन हो गए? माई बाप हो गए कि नहीं? अरे अम्मा बाप हुए ना। एक बाप जिसने प्रवेश किया बीज बोने के लिए और जिसने प्रवेश किया वो आधार हो गया। तो वेद की दृष्टि में तो ये हो गए ना। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया। क्या कि तुम ये दासी पना छोड़ दो,
दासी बनना माना स्थूल पाँव दबा दे। बाबा तो जो जैसी बुद्धि थी वैसा ही समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? ये स्थूल पाँव दबाने की क्या जरूरत है? अब बात क्या थी? ये बात कहाँ की है? किसे सैया पर नारायण पड़ा हुआ है विष्णु और लक्ष्मी जी उसके पाँव दबा रही है, इसका बेहद का अर्थ क्या हुआ? अच्छा सैया तो विष्णु नहीं, लक्ष्मी नहीं बैठी हुई, पाँव दबाने वाली भी तो सिर्फ सैया पर सर्पों की सैया बैठी हुई है और विष्णु भी बैठा हुआ है, सो रहा है आराम से। नहीं तो सर्पों के ऊपर कोई सो नहीं सकता, चैन की नींद सो सकता है? सो नहीं सकता है। हाँ और सर्प विकारी मनुष्यों की बात है कि जब बात आते हैं तो विकारी मनुष्य उनके गले पड़ते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करता। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है। अरे दासी का काम किसी दूसरे को करने दो। दासी का काम क्या होता है? बाल बच्चों का कचरा उठाना। और लक्ष्मी को कहा तुम जाओ दूर, क्या है? नारायण नारायण है, नारायण तो नारायण है ना, तो नारायण किसको अलग कर दिया? लक्ष्मी को दूर भगा दिया है। बात कहाँ की? आदि की है कि अंत की है? शूटिंग पीरियड की है कि कलयुग के अंत की है? तो शूटिंग पीरियड में भी ऐसा ही किया होगा। लक्ष्मी को दूर भगा दिया। दास दासी का कर्म करने वाले बहुत तेरे हैं, जो अच्छा पुरुषार्थ नहीं करेंगे बाप की जिस सर्विस भी करेंगे तो क्या बनेंगे? दास दासी बनेंगे। हाँ ये है कि कोई फर्स्ट क्लास दासियां होती और कोई थर्ड क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई दासियों की भी हेड होती। तो दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है किसको? बाबा को। बाबा को भी खुशी है, लक्ष्मी को भी खुशी रहेगी इस बात में कि हमको दासी पने से मुक्त कर दिया। हाँ जैसे सत्युगुण में हम ये शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेंगे तो खुशी होती है। बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर के प्रिंस गोरा बनूंगा, पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे? क्या
बनेंगे?
दूसरों को पुरुषार्थ कराएंगे तो क्या बनेंगे? प्रिंस बनेंगे, मुफ्त में थोड़े बनेंगे। तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तुम स्वर्ग का वर्ष कर पाएंगे। कोई तो पढ़ते ही नहीं है, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल भी नहीं रखते। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो उच्च बनने वाले होंगे, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे पोता मेल का। कागज में फटाफट लिख लिख करके दे दिया, दो मिनट में लिखा सारा पोता मेल। नहीं नहीं हाँ पैसा निकाल काटा नहीं, गहराई से देखेंगे भी नहीं। पंद्रह बीस रोज के बाद लिखना छोड़ देते, शो करने वाले क्या करेंगे फिर? फिर बंद कर देते। बाबा का कहना फर्ज से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है, और फर्ज से नहीं मानो और सड़ाए गलाए के डायरेक्शन को अमल में लाया तो जिनसे सड़ा हुआ फल खाने से क्या होता है? बीमारी हो जाती। तो फर्ज से आज्ञाकारी का वफादार फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कौन से बच्चों को?
कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी हरकत ही दे करके चले गए। क्यों भारगति देके क्यों चले गए? पहले सरेंडर क्यों हो गए थे? पहले सरेंडर क्यों हो गए फिर भारगति देकर के क्यों चले गए? हाँ पहले सत्व प्रधान से फिर सरेंडर हो गए। बाप जैसा उन्हें दुनिया में कोई दिखाई नहीं पड़ा। फिर जब उल्टा कर्म किया, कहीं दृष्टि लगी, कहीं वृत्ति लगी, कहीं कर्मणा लगी, वाइब्रेशन लगे, अटैचमेंट हुआ, तो तमो प्रधान होते थे। तो फिर क्या रिजल्ट होगा? फिर जिनसे अटैचमेंट हुआ वहां तो सौ गुना हजार गुना मोर चढ़ेगा। उस दुनिया में तो एक गुना मोर चढ़ता था और यहाँ हजार गुना मोर चढ़ता है। तो रिजल्ट क्या होगा? विपरीत बुद्धि बिना चलती हो जाती। तो फारगति देकर के चले गए। ये कभी इसकी फारगति वह डाइवोर्स नहीं देंगे। कौन? हाँ ये तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने, यानी बाप पितर को नहीं निकालेंगे, लेकिन बच्चे ही खुद निकल जाते। सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठेकेदार। और ठेका देने वाला? अरे ठेकेदार होता है तो कोई ठेका देने वाला फिर भी तो होता है, वो कौन है? कॉन्ट्रैक्टर कौन, ठेकेदार कौन, और ठेका देने वाला कौन है? शिव बाबा है ठेका देने वाला, और कॉन्ट्रैक्टर है प्रजापिता। तो बाप कहते हैं कि ज्ञान अनुसार बड़ा कंसेप्ट उठाने आया हूँ, मैं सबसे बड़ा कंसेप्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कंसेप्टर एक ही है और वो तुम्हारे सामने बैठे। क्या एक ही ठेकेदार है और वो भी तुम्हारे सामने बैठे? सामने बैठे मन सन्मुख बैठे, ऐसे कहेंगे बिंदी सन्मुख बैठी है हमारी है। बिंदी के तो खड़े होने बैठने और सोने की बात है। कोई को कितना निश्चय है, कोई को तो बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे, उनकी चलन ऐसी है, अंदर उनको जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर और बाबा के बनकर के लिए क्या करते हैं? जो बाबा के पास रहेंगे, बाबा के बने और रहे उनके पास, और फिर छोड़ करके चले गए तो दुनिया वाले क्या समझेंगे? जिनको बाप के ऊपर निश्चय नहीं हुआ है या जिनको हुआ है वो क्या समझेंगे? है तो जो बाप के बने तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया, समर्पण हो गए, स्वाहा हो गए, वो तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। हम क्यों उनके पीछे फिर? तो डिस्टर्बिस होगी या सर्विस होगी? डिस्टर्बिस सर्विस कुछ नहीं करते हैं तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना, ये तो पहले भी तेरे सर्जनम करते रहे। क्या रोटी पकाना, सर्विस करना, ये स्थूल सेवा करना, ये कोई खास सेवा नहीं है। खास सेवा है बाप का नाम दूसरी आत्माओं के सामने भाला करना। हाँ ये त्रेसठ जन्म तो धंधा करते रहे आत्माओं के साथ, वो ही धंधा यहाँ भी करते हैं मधुबन में बैठ करके, वो भी उसका भी उजूरा बनता है, लेकिन उसमें भावना काम करती है। भाव प्रधान विश्व रचिरा का, जिस भाव से और जिसके लिए करते हैं वो भी देखा जाता है। बाप को पहले भोजन खिलाने के लिए करते हैं या दूसरी आत्माओं के लिए प्यार में आकर करते हैं? अगर बाप के लिए करते होंगे तो पहले भोग किसको लगाएंगे? पहले बाप को भोग लगाएंगे। ये सब्जी पकाना, रोटी पकाना, ये तो पहले भी करते थे। पहले माने कब? तिरसठ जन्म भी यही करते रहे। नई बात है क्या? सर्विस का सबूत देना। सर्विस का सबूत क्या? जिन आत्माओं की सेवा करें, जिन आत्माओं के सामने बाप का नाम बाला करें, वो आत्माएं स्वयं सन्मुख आए और बात पर निश्चय बुद्धि बने। इतने को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तो मुझे उनको प्रैक्टिकल में देख रहे। ऐसे नहीं कि बाप कपोड़ा ही लगा रहे हैं। जो कुछ होता है वो सब तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्रों में तो कृष्ण के चरित्र रख दिए हैं। चरित्र किसके रख दिए हैं? कृष्ण के। लेकिन चरित्र है किसके? चरित्र है एक बाप के। अब उसको चाहे संगमी जी कृष्ण कह दो, चाहे शंकर कह दो, चाहे प्रजापिता कह दो, व्यक्तित्व तो पर्सनालिटी तो एक ही है। तो शास्त्र में जो भी बातें हैं कहाँ की? संगम। वो सर्व का सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो नहीं सकता। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए ना। बाकी भगाना, यह करना, ये कोई चरित्र आदि नहीं। क्या था है? दांत पकड़ के किसी को डरा के ले गए, किसी के घर में से निकाल के, ये कोई चरित्र हुआ? किसी घर में जाकर के मटुकिया फोड़ी क्या जाके, ऐसी चोरी की? ऐसे कोई चरित्र नहीं है। ये तो बुद्धि योग से आत्माओं को आकर्षित करने की बात है। ये योग बल की बात है। ये कोई बाहुबल की बात है नहीं। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बात है। वो कल्प कल्प आकर के स्वर की स्थापना करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात नहीं है। तो बच्चों को ठीक ही आदतें छोड़ देनी चाहिए। नहीं तो क्या पद मिलेगा? मासूक भी गुण देख करके आशिक होंगे ना। क्या कहा? आशिक और मासूक। कौन आशिक और कौन मासूक है? आशिक आत्मा, मासूक बाप। अच्छे बाबा नहीं है? शिव बाबा है मासूक, लेकिन आशिक आत्माएं हैं। लेकिन वो ऐसा मासूक है जो किसी पर फिदा, किसी पर फिदा नहीं होता। चरित्र कर सकता है, बाकी फिदा नहीं होता। हाँ, जो बाप को प्यार करते हैं उनको उनको बाप प्यार करते हैं। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। क्या कहा? तन मन धन समय संपर्क संबंध सब अर्पण कर दिए तो फिदा होगा। पटिंगा कैसे फिदा होता है? समाधि ऊपर जरूरी है। अपना शरीर का भी चिंता नहीं, कितनी प्रीति करता है। अरे कौन सा बाप की बात है? अभी सारी बात में यही तो बात बताई। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। किनकी? जो उनकी सेवा करेंगे उनके ऊपर आशिक होगा। सेवा नहीं करेंगे तो उनके ऊपर आशिक नहीं होगा। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के? एक वाणी में तो कहा कि बाप किसी पर आशिक नहीं होता, वो तो मासूक है। हाँ, तो सुप्रीम सोल बाप किसी पर आशिक नहीं होता। आशिक कौन होता है? जो प्रजापिता है, मनुष्यों का बाप। वो शेष आत्माओं के ऊपर, सत्व प्रधान आत्माओं के ऊपर आशिक आशिक होता है। तो ये बातें बहुत समझने की हैं। क्या बात समझाते हैं? तो महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। क्यों समझाने की क्या दरकार है? जरूर इस बात को अपने भाग्य को समझते नहीं है कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध मूर्ति बनानी चाहिए ना। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो 9 लाख आत्माएं जाएंगे, लेकिन ऊंची प्रारब्ध बनाना ये बड़ी बात है। क्योंकि जिनकी ऊंची प्रारब्ध होगी वो अनेक जन्म सुखी रहेंगे, क्योंकि उनमें दक्ष है पुरुषार्थ करने के। 21 जन्मों का जो पुरुषार्थ का प्रारब्ध बनता है उस हिसाब से 63 जन्मों का भी पुरुषार्थ जीवन का हिसाब किताब स्वतः ही बन जाता है। जो 21 जन्मों में उच्च पद पाने वाली आत्माएं होंगी वो उसी हिसाब से 63 जन्मों में भी हर जन्म में पुरुषार्थ करती रहेंगी अच्छे से अच्छा, और उस पर पाती रहेंगी। यहाँ के पुरुषार्थ के संस्कार आत्मा में बढ़ रहे, तो पल पल पांतर की बात है, पोजीशन फिर कम हो जाता है। कुछ नहीं होना चाहिए कि हमें जो कुछ मिला तो अच्छा, पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए। तीसरा थी कितनों को आप समान बनाया है ये देखना चाहिए, कैसा बनाया है आप समान, आप समान मन अपने बराबर, अपने बराबर मन कैसा पुरुषार्थ, जात जाति का पुरुषार्थ, कोई कैसा पुरुषार्थ करता है, कोई कैसा पुरुषार्थ करता है। तो हम जितने बाप के नजदीक हैं उतनी ही दूसरी आत्माओं को भी बाप के नजदीक लाएं, संपर्क संबंध में जुटाएं, तो उन आत्माओं को भी फायदा हो जाए। तो कितनों को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहाँ है? जिनको आप समान बनाया है वो प्रजा कहाँ है? बाप पीछे सबको तदबीर कराते हैं, परंतु किसी की तदबीर में भी हो ना, कृपा आशीर्वाद तो ये है जो बाप अपना शांति धाम छोड़ करके पतित दुनिया और पतित शरीर में आते हैं, यही उनका आशीर्वाद है। नहीं तो तुमको रचयिता और रचना की नॉलेज सुनाएगा कौन? ये भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता है कि कलयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य, क्या ये भी बुद्धि में नहीं बैठता? तो प्रश्न करते रहते हैं कि अब तो राम का राज्य चल रहा है, अब तो राम के हाथ में सारी ताकत आ गई, अरे अभी राम का राज्य है भी कि ताकत ही आ जाएगी? राज्य किसका है अभी? अभी भी रावण का राज्य, क्या मधुबन में रावण का राज्य नहीं है? मधुबन में माया रावण नहीं घुस सकता है? बाबा तो कहते हैं माया बेटी, जब बेटी है तो बाप के साथ ही होगी कि नहीं होगी? तो किसी की बुद्धि में नहीं बैठता है कि सत्युग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य होता है। राम राज्य में एक ही राज्य था और रावण राज्य में अनेक राज्य, क्या एक ही राज्य था, एक का शासन चलता था, और रावण राज्य में जो आता है वही मोड़ देता है। तो किसका शासन हुआ? अनेकों का कि एक का? इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी हो, कहाँ के वासी हो? परंतु मन की ये नहीं समझते हैं कि हम है कहाँ, हम स्वर्ग में है या नरक में। ये है सांपों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा, तो फालू फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है। फालू किसको करना है? फादर को, मदर को और अनन्य बच्चों को फालू करना है। अनन्य माने जिनके जैसे और कोई बच्चे न हो, तब ही ऊंची बनेंगे। बात समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे ना, क्या समझाते हैं?
कालू फादर और मदर कौन है? किनको फॉलो करना है? किस बात में फॉलो करना है? क्योंकि फॉलो करना दो प्रकार से होता है, एक होता है कर्म में फॉलो करना और एक होता है डायरेक्शन को फॉलो करना। तो डायरेक्शन को फॉलो किसका करना है? बाप का। और फॉलो फादर और मदर माना? हाँ, ब्रह्मा बाप ने जैसे कर्म किए वैसे कर्मों को हमें फॉलो करना है और डायरेक्शन बाप का मानना है। परंतु कोई समझने वाला समझे ना, कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना नहीं कर देते। जहाँ तहाँ लिखा पड़ा है क्यों बाबा याद है, तो बर्ता भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे, अगर क्रोध होगा आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद पाए नहीं सकेंगे। वहां कोई भूत होता ही नहीं, कहां सती रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आवेंगे। और यहां तो रावण भी है तो रावण के भूत भी आके सवार हो जाते हैं। दे अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, ये है बड़े भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, क्या? बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते भी कौन करता? नमन करना माना झुकना, झुकता भी कौन है? रूहानी बाप रूहानी बच्चों को झुकता है। जिस्मानी बाप प्रजापिता झुकता नहीं है इसको बच्चों को। क्यों भाई वो क्यों नहीं झुकता? वो क्यों झुकता है? कौन? ज्योति बिंदु बाप। क्योंकि उसको रथ ही नहीं है तो रथ का अहंकार भी नहीं है, और जिसको रथ है उसको रथ का अहंकार है कि मेरा रथ तो बिंदु का मालिक बनेगा। अधिकार पार्थ को बैठ रहना ये बराबर तो कर्म है, है? किसी को सीट मिले और सीट छोड़ करके भागने लगे, जैसे मनमोहन दीदी को ब्रह्मा बाबा ने सीट दे दी, क्या है डाक में उन सारा कंट्रोल करो, और उन्होंने सीट छोड़ दी तो यज्ञ का क्या हाल हुआ ब्राह्मणों की दुनिया का? बेहाल हो गए। तो जिस जिसको अधिकार मिला है, जो सीट मिली है उस सीट पर सेट होकर के अपने कर्तव्य को जरूर निभाना है। तो रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, ओम शांति।
कभी कभी मेला मिल जाता
है, कभी कभी तो तब मिल जाता है जहाँ कोई लड़ने वाला मौजूद ही नहीं होता। यहाँ तो माया लड़ाई लड़ने के लिए हर रमे तैयार।
मिलने वाले होते हैं लेकिन इसका मुकाबला करने वाले,
हम मुकाबला हुए ही वही मुकाबला करने के लिए जब तैयार ही नहीं हो कोई, तो यहाँ तो माया मुकाबला करने के लिए तैयार ही बैठी। तो पांच विकारों पर जीत पानी है तभी ही जगत जीत बनेंगे। कायरों मुआफिक भागने से जगत जीत नहीं बन सकते। तो अखाड़ो देखो और भात खाड़े में, नहीं तो पद नहीं पा सकेंगे। बाप कहते हैं मरना तो सबको है, तो डरने की बात नहीं। कोई तो शरीर की मौत मरेंगे और कोई है कोई जीते की मरेंगे। मरना तो सबको है, ये अंतिम जन्म है, फिर तुम जाए नई दुनिया में राज्य करेंगे। हीरे जवाहरातों की खानियां भरपूर हो जाएंगी, वहां तुम हीरे जवाहरातों से खेलते रहेंगे। यहाँ किससे खेल रहे हो? हैं? कौड़ियों पत्थरों से। सब घबराओ मत। तो भगवान के बने और कौड़ियों पत्थर खेलने के लिए मिल रहे हैं? धीरज धर मनुआ, धीरज धर, धीरे धर आ रहा तो उनसे खेलते रहेंगे। तो ऐसे बाप के बनकर उनकी मत पर भी चलना चाहिए ना? कैसे बाप के बनकर है? ये तुमको हीरे जवाहर हाथों से खिलाने वाला है। जब खिलाएगा तब खिलाएगा, अभी क्या हाल है? हैं? अभी तो पत्थर पड़ गए पल्ले। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनेगी। रावण की मत से तुम भ्रष्टाचारी बने हो। अब बाप की श्रीमत पर चल, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करना है और कोई तकलीफ बाप नहीं देती। क्या याद से सिवाय और कोई तकलीफ बाप नहीं देते? भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत धक्के खाए हैं? बहुत पेट भरियो हैं? क्या बहुत थोड़ो मन हो है? हैं? आ बना है? अच्छा, अब सिर्फ बाप को याद करो, षष्ठी चक्र को याद करो। सदर्शन चक्रधारी बनो तो तुम 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। कौन से चक्रधारी बनो? प्रदर्शन चक्रधारी नहीं, क्या? हाँ, सदर्शन चक्रधारी बनो। अनेक बार तुमने राज्य लिए और गंवाया है, ये तुम्हारा चलता आता है। 84 जन्म तो लेते आए हो, आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। अभी तुमको स्मृति आई है, हम कैसे लगाते? ये चक्र बुद्धि में रखना है। बाप है ज्ञान का सागर, तुम यहाँ बेहद के बाप के सामने बैठे हो। ऊंच से ऊंच भगवान प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा तुमको वर्षा देते। तो अब विनाश होने के पहले बाप को याद कर लो और पवित्र बनो। ये तो साधु सन्यासी क्या करते हैं? वो बाप को कब याद करना शुरू करेंगे? पिछाड़ी में जब विनाश का टाइम आ जाएगा तब बाप को याद करना शुरू करेंगे। तो पूरी कर ही नहीं सकते, तो विनाश के पहले बाप को याद करो, पवित्र बनो। अच्छा, मीठे मीठे से खिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।